الحمد لله، الحمد لله، وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، پچھلے چند دنوں سے صاحب نسبت لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے تھے. صاحب نسبت جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ، اس کو ذکر و عبادت کا شوق بھی ہوتا ہے، اس کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے، اس کے اعمال میں اس کی نیت ہمیشہ صحیح. اور صاحب نسبت لوگوں کا تیسرا وصف یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ گناہوں سے اللہ محفوظ اسے فرما لیتے ہیں. گناہوں سے بچنے کی اتنی اس نے اہتمام کیا کہ اب گناہ میں پڑنے سے اللہ اس کو خود ہی محفوظ فرما لیتے ہیں. چنانچہ پچھلے 3-4 دن سے ہم ان گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن گناہوں میں نیک لوگ یا سلوک طے کرنے والے، شیخ سے بیعت ہونے والے لوگ بھی کئی مرتبہ پھنس جاتے ہیں. عام طور پہ نیک لوگ یا مشائخ سے بیعت ہونے والے لوگ، سلوک طے کرنے والے لوگ، یہ زنا کے یا قتل کے یا چوری کے یا شراب والے گناہوں میں نہیں ہوتے. عام طور پہ باطنی گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں اور چند ظاہری گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں. چنانچہ چند گناہوں کا تذکرہ ہو چکا اور چند گناہوں کا تذکرہ ہونا باقی. یہ وہ گناہ جو نیک لوگ بھی کر جاتے ہیں، اس میں سے ایک گناہ بد نظری کا گناہ اور دوسرا بے پردگی کا گناہ. تیسرا غصے کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی، اور چوتھی چیز تھی بخل. کئی مرتبہ ہم اس گناہ کے بھی مرتکب ہوتے ہیں. تو بخل کو ہم اتنا گناہ سمجھتے نہیں کہ کیا ہوا اگر میرے دل میں زیادہ مال خرچ کرنے کی شوق نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ. اس کو مال جمع کرنے کا شوق ہے، اللہ اکبر، ٹھکانہ جہنم میں بنایا. کم و بیش اس طرح کی آیت ہے. ایک کنجوسی اللہ کو پسند نہیں. مومن دل کا فراخ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اصل امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو. یعنی اگر اس کے پاس مال تھوڑا بھی ہے، مگر اس کو شوق یہ ضرور ہے کہ یہ مال جو ہے اپنے گھر والوں پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے دوستوں پہ، غریبوں پہ، دین پہ خرچ کروں، جہاں موقع ملے میں لگا دوں. یہ بڑی صفت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ رات میں اور دن میں خرچ کرتے ہیں اور چپکے سے خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا. یہ مال خرچ کرنے والی صفت، یہ ایسی صفت ہے کہ اس صفت کا حامل جو شخص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوف سے بھی محفوظ فرماتے ہیں، غم سے بھی محفوظ فرماتے ہیں. آج کی اس مجلس میں ایک اور ایسے گناہ کا تذکرہ کہ جو عام طور پہ نیک لوگ بھی کر بیٹھتے ہیں، और वो है झूठ बोलना, जुबान का गलत इस्तेमाल करना, धोखा दही करना। ये कई मर्तबा इबादत गुजार बंदा भी कर बैठता है। दीन इस्लाम ने झूठ बोलने को बहुत बड़ा गुनाह बताया। इसको इतना बड़ा गुनाह कहा गया कि शायद ही ऐसा कोई बड़ा गुनाह हो। कुरान में और किसी गुनाह पे इतनी ज्यादा मर्तबा लानतें नहीं भेजी जितना झूठे पे लानत भेजी। इसलिए ये इबारत जो है ना कुरान पाक की, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये कुरान में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा ये आयत आई है। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की निशानी ये है कि जब वो बात करता है तो वो झूठ बोलता है, जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। तो अपने कॉल से फिर जाना ये भी मुनाफिक की निशानी है। और झूठ प्लान करके बोलना ये भी मुनाफिक की निशानी है। और झूठ आम हो गया है। और अल्लाह वालों की शान ये है कि वो झूठ से बचते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जिन लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म दिया उनके बारे में फरमाया वकूनू मअस सादिकीन, कि तुम ये सच बोलने वाले लोगों के साथ हो जाओ, कि जिसकी जुबान पे सच मौजूद है वो अल्लाह वाला है। तो दूसरे अल्फाज में यूं समझ लें कि जो शख्स अल्लाह वाला होगा, साहिबे निस्बत होगा, वो सच बोलता होगा, झूठ नहीं बोलता। और जो शख्स सच बोलता है वो अल्लाह वाला होगा। ये दोनों चीजें अपनी जगह से, अगर ईमान है और जुबान पे सिर्फ सच ही है तो फिर वो शख्स जो है अल्लाह वाला है। अल्लाह हमारे जानने वाली एक खातून, उन्होंने अपने शोहर की शिकायत की कि जी वैसे तो नमाज वगैरह पढ़ते हैं और सारा कुछ करते हैं, घर में बच्चों के साथ मेरे साथ अच्छा रवैया भी, मगर दीन में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाते। ये शिकायत एक खातून ने, अल्लाह की शान इनके शोहर से एक मर्तबा इस आजिश की मुलाकात हो गई। 1-2 घंटे साथ बैठे, खाना भी साथ खाया, गुफ्तगू होती रही। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बताया कि वो दिन थे जब पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स के फ्रॉड के ऊपर बहुत ज्यादा मामला चल रहे थे, बेनामी अकाउंट्स के मामला चल रहे थे। यानी आम सा गरीब बंदा होता और उसके अकाउंट में से अरबों रुपए निकल आते या करोड़ों रुपए निकल आते। तो ये जो साहब थे उन्होंने कहा कि जी मेरी नौकरी थी आज से 15-17 साल पहले, वो 30-40 हजार रुपए थे। उन्होंने कहा कि जी पहले इस तरह से बैंक अकाउंट्स और एटीएम कार्ड और एसएमएस मैसेजेस नहीं होते थे, बैंक में जाके चेक कैश करवाते थे और वहां से पैसे मिलते थे। कहने लगे मैं बैंक गया और बैंक में जाके मैंने उनसे कहा कि जी मेरी महाना तनख्वाह क्योंकि 40 हजार थी तो कुछ पैसे बैंक काटता था या इस तरह से था, तो मैं देखना चाह रहा था कि मैं कितने निकाल सकता हूँ। महीने के महीने फिर 0 हो जाते थे पैसे बैंक में, यानी 40-45 हजार रुपये जो भी पड़े हुए होते थे वो पूरे निकाल लेता था, 100-150-200 रुपया रह जाता था, अगले महीने फिर तनख्वाह आती तो फिर निकाल देता। तो वहां बैंक वाले बंदे से मैंने पूछा कि जी मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं ताकि मैं उतने निकाल लूं। उसने चेक करके बताया तो उसने कहा जी कोई 7-8 लाख रुपया पड़ा है, आज से 20-25 साल पहले 7-8 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम थी। अल्लाह, तो उन्होंने उस कैशियर को कहा कि भाई मुमकिन ही नहीं है कि मेरे अकाउंट में 7-8 लाख रुपए हो, क्योंकि मेरी तनख्वाह 30-40 हजार रुपए है, हर महीने 30-40 हजार रुपए मेरे अकाउंट में आता है और मैं सारा निकाल लेता हूं तो कहां से 7-8 लाख रुपए। उन्होंने कहा सर गलती हो गई है ये, वो चेक किया आधा पौना घंटा लगा आपसे पता चल, जी जी गलती हो गई, गलती। उस आदमी की सच्चाई देखो कि अकाउंट में 7-8 लाख रुपया बैंक वाला कह रहा है कि पड़ा है, मगर उसने झूठ नहीं कहा, उसने सच सच कह दिया मेरा नहीं है। ये वो शख्स जिसकी अहलिया शिकायत कर रही है कि जी नमाजें तो पढ़ते हैं, घर में भी अच्छा मामला है, बस ज्यादा वक्त नहीं देते हैं, और इस आजिश के जिम्मे लगाया कि जी उनको थोड़ी तरगीब दें। जब ये वाकया सुना मैंने कहा जी इससे ज्यादा नेक इंसान कौन कि जो इतना सच का मामला करे, मगर बात यहां तक नहीं थी। कहने लगे कि फिर चंद महीनों बाद इसी तरह मैं बैंक गया और मैंने उनसे पूछा कि जी आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे। उन्होंने कहा जी 16 लाख रुपए है या 17 लाख रुपए। कहते मैंने उसी वक्त चेक लिखा 17 लाख रुपए का कि जी मुझे 17 लाख अभी चाहिए। कहते 17 लाख मेरे अकाउंट में कहाँ, ये कह रहे कि 17 लाख है। मैंने चेक लिखा और 17 लाख रुपए वो कैशियर ला के उसने मेरे सामने रख दी कि ये आपके 17 लाख। कहने लगे कि मैं ये पैसे लेकर और बैंक के मैनेजर साहब के पास गया कि देखो तुम्हारे बैंक में से मैंने वो 17 लाख निकाले जो मेरे हैं नहीं, ये लेके जा भी सकता हूं, सिर्फ तुमको बता रहा हूं कि कोई गड़बड़ हो रही है तुम्हारे बैंक में, ये 17 लाख वापस रखो, रो अपना निजाम को सही करो। अल्लाह, तो आम अच्छे नेक इंसान के लिए भी आजमाइश बन जाती है कि जी ये वापस करने हैं, ये रखने हैं, ये हराम है, मेरा नहीं है। तो जब ये गुफ्तगू उनके साथ हुई तो उनकी अहलिया को पैगाम भिजवाया कि अल्लाह की बंदी अल्लाह का शुक्र अदा कर, ऐसा नेक बंदा इस वक्त जमाने में मौजूद नहीं है जिसकी तू शिकायत कर रही है। तो ये पक्की बात है, अल्लाह ने भी हुक्म दे दिया सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ रहोगे अल्लाह वाले बन जाओ, तो जो अल्लाह वाला होगा वो सच्चा होगा और जो वाकई सच्चा होगा वो अल्लाह वाला होगा। तो अकाबरीन ने सच सिखाया, अगर ये सच मौजूद नहीं तो बाकी तमाम जो नेकियां करते हैं, हदीसे पाक की रूह से तो यही लगता है कि अगर सच मौजूद नहीं फिर तो मुनाफिक बन गए, ईमान ही नहीं है, तब सारी बाकी नेकियों का क्या फायदा होगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन और बाकी बहुत सारे गुनाह कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता है। और आज झूठ का बोल बाला है। औरत कहती है कि जी मजबूरी है, सास से तो झूठ बोलूंगी वरना घर में लड़ाई है। शौहर कहता है कि जी बीवी से झूठ बोलूंगा क्योंकि घर में लड़ाई है। अब ये झूठ बोलने का मकसद ये थोड़ी होता है कि हर मामले में झूठ बोला जाए। नौजवान कहता है कि जी वालदैन से झूठ बोलूंगा वरना वो नाराज होंगे। तो सच्ची बात यह है कि झूठ बोलने वाला शख्स इतना बुरा इसलिए है कि वो झूठ बोलता है, इसलिए है कि वो गड़बड़ कर रहा होता है। तो दीन इस्लाम ने सच सिखाया, सच बोलने वाले ही को नबी अलैहिस्सलाम ने पसंद किया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जुबान जो है वो चम्मच की मानिंद है, दिल हंडिया की मानिंद है। तो जो चम्मच में होगा वही हंडिया में होगा। अगर जुबान झूठ बोलती है इसका मतलब है कि दिल बीमारियों से भरा हुआ है। एक आखिरी बात और फिर आज की बात मुकम्मल करते हैं। किसी मदरसे के अंदर जहां तालीमें बालिगान होती थी, बड़ी उम्र के लोगों को भी दीन की तालीम दी जाती थी, तो इम्तिहानात होते थे। उस इम्तिहान के अंदर मदरसे के जो असातिज़ा थे उन्होंने शिकायत की कि जी तलबा जो है वो चीटिंग करते हैं, नकल करते हैं। अल्लाह मदरसे के मोहतरम साहब को पता चला कि जी दीन पढ़ने वाले जो बड़ी उम्र में आके दीन पढ़ रहे हैं, यानी कोई वालदैन की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि जी जाओ मदरसे में पढ़ो, अपनी मसरूफियत में से जिन्होंने वक्त निकाला कि जी दीन थोड़ा सीख लो, शौक से पढ़ने आए, इम्तिहान के पर्चे में नकल कर रहे हैं दूसरे, कोई समझ में आने वाली बात नहीं। उन दोनों तलबा को बुलाया, बड़ी उम्र के लोग, उनसे पूछा जी नकल करते हैं? उन्होंने जी कर रहे थे, इतना सच जरूर बोला। उन्होंने कहा क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा जी माफ कर दे। मोहतमर साहब जो होते हैं उनका तो दिमाग ही आउट हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अगर दीन पढ़ के भी यही काम करना है और उस दीन के इम्तिहान के अंदर कुरान और हदीस के इम्तिहान में ये काम करना है तो ना पढ़ो, ज्यादा बेहतर है कि इस गुनाह के मुर्तकिब तो ना हो। ने कहा जी यहां आने का फायदा ही कोई नहीं हुआ आपको, मगर वो इसलिए कर रहे थे कि ये झूठ बोलना ये आम हो चुका है। गो के हम माशरा अपने आप को मुसलमानों का माशरा कहते हैं, मगर ये बीमारी आम हो गई है। आज इस अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में 4 से 5 साल पढ़ता रहा, बहुत सारे इम्तिहान दिए, बहुत सारे असातिज़ा से पढ़ा, किसी इम्तिहान में कभी भी किसी को नकल करते हुए नहीं देखा, ना किसी उस्ताद को मदद करते हुए देखा, ना कोई ऐसी सूरत हाल, ना सोच किसी की थी। तो गो के गैर मुस्लिम माशरा है, मगर उनकी सच्चाई को मानना पड़ेगा कि धोखा वहां थोड़ा नहीं है, झूठ वहां नहीं है जितना हमारे माशरे में है। अल्लाह ताला इन गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए, दिल की सच्चाई नसीब फरमाए। आखिर दावाना الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.